डैनियल की पुस्तकता संख्या 25।
बाबुल की अवनति का अनावरण, नबुकदनेस्सर से बेलशस्सर तक का एक भविष्य सूचक खंड।
पांचवें अध्याय में बागमियो सरसर का पतन, चौथ में नबुकदनेस्सर के जुरेन द्वारा पूर्व चित्रित किया गया था।
बाबुल के अंतिम शासक तक, जैसा कि आदर्श रूप में उसके प्रथम तक, देवीय प्रहरी का ये दंडादेश आ पहुंचा था। हे राजा, तुझ ये कहा जाता है, राज्य तुझसे चला गया है। दानियेल 4:31, प्रॉफिट्स एंड किंग्स 5:53।
नबुकदनेस्सर 70 वर्षों तक शासन करने वाले राज्य के आरंभ का और बेलशस्सर उसके अंत का प्रतिनिधित्व करता है, और इस प्रकार वो प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 के पृथ्वी से आने वाले पशु संयुक्त राज्य अमेरिका के शासन का प्रतीक था, जिसे उस समय शासन करना था जब सोर की वेश्या पोप तंत्र बुला दी गई थी।
और उस दिन ऐसा होगा कि सोर 70 वर्ष तक एक राजा के दिनों के अनुसार बुला दिया जाएगा। 70 वर्ष के अंत में सोर वेश्या के समान गीत गाएगा। यशाया 23:15।
अतः नबुकदनेस्सर संयुक्त राज्य अमेरिका की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है और बेलशस्सर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। नबुकदनेस्सर रिपब्लिकन सिंह की शुरुआत और प्रोटेस्टेंट सिंह की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। बेलशस्सर रिपब्लिकन और प्रोटेस्टेंट सिंह के अंत का प्रतिनिधित्व करता है। नबुकदनेस्सर पर जो दंड आया वो 7 काल था। नबुकदनेस्सर के पशु के समान 2520 दिन तक रहने की कथा का उपयोग विलियम मिलर ने लाइवी व्यवस्था 26 के 7 काल के अपने अनुप्रयोग में किया, हालांकि उन्होंने उस 2520 का उल्लेख नहीं किया जो बेलशस्सर के न्याय में प्रतीक रूप से दर्शाया गया है।
और जो लिखा गया था वो ये है, मैंने तेकेल उफरसीन। इस बात का अर्थ ये है, मैंने परमेश्वर ने तेरे राज्य की गिनती की है और उसे समाप्त कर दिया है। तेकेल, तू तराजू पर तोला गया और कम पाया गया। पेरस, तेरा राज्य विभाजित किया गया है और मादी और फारसियों को दे दिया गया है। दानियेल 5:25-25 की
दीवार पर रहस्यमय लिखावट को लेकर डैनियल द्वारा दी गई व्याख्या के अतिरिक्त मैंने और टेकल शब्द भार की एक माप का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये शब्द सिक्कों के एक विशिष्ट मूल्य का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। एक्सोडस 30:13, एजेकियल 45:12। एक मैने 2000 गैरास के बराबर होता है, एक टेकल 20 गैरास होता है, इसलिए मैने टेकल 2020 गैरास के बराबर होता है। उफारसिन का अर्थ विभाजित करना है, और इस प्रकार वो मैने का आधा है और 500 शब्द को दर्शाता है। मिलाकर वे 2520 का योग दर्शाते हैं। बहन व्हाइट के अंतिम उद्धरण में ये बताया गया है कि बेलशस्सर का प्रकार नबुकदनेस्सर था, परंतु विशेष रूप से उन्होंने दोनों के न्याय पर जोर दिया, और दोनों न्याय लैव्य व्यवस्था 26 के 7 समय के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। शास्त्र लैव्य व्यवस्था 26 के 7 समय को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। यिर्मयाह इसे परमेश्वर के कोप के रूप में प्रस्तुत करता है।
किस प्रकार प्रभु ने अपने क्रोध में सियोन की पुत्री को बादल से ढांप दिया है और आकाश से पृथ्वी पर इसराइल की शोभा को गिरा दिया है, और अपने क्रोध के दिन अपने पादपीठ को स्मरण नहीं किया। प्रभु ने याकूब के सब निवास स्थानों को निगल लिया है और दया नहीं की। उसने अपने कोप में यहूदा की पुत्री के दुर्गों को ढा दिया है, उन्हें भूमि तक गिरा दिया है। उसने उसके राज्य और उसके सरदारों को अपवित्र किया है। उसने अपने उग्र क्रोध में इसराइल के सब सींग काट डाले हैं। उसने शत्रु के सामने से अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया है, और वो याकूब के विरुद्ध धधकती आग के समान जल उठा है जो चारों ओर भस्म कर देती है। उसने शत्रु की तरह अपना धनुष तान दिया है, वो विरोधी के समान अपने दाहिने हाथ के साथ खड़ा रहा है, और सियोन की पुत्री के तंबू में जो देखने में मनोहर थे उन्हें सबको मार डाला है। उसने अपने कोप को आग की तरह उंडेल दिया है। प्रभु शत्रु के समान हो गया है, उसने इसराइल को निगल लिया है, उसने उसके सब राजमहलों को निगल लिया है, उसने उसके दुर्गों को नष्ट कर दिया है, और यहूदा की पुत्री में शोक और विलाप बढ़ा दिया है, और उसने अपने मंडप को मानो वो किसी बाग का हो, उखाड़ फेंका है। उसने उसके सभा स्थलों को नष्ट कर दिया है। प्रभु ने सियोन में नियत पर्वों और विश्राम दिनों को भुला दिया है और अपने क्रोध की जलन में राजा और याजक का तिरस्कार किया है। प्रभु ने अपनी वेदी को तज दिया है, अपने पवित्र स्थान से घृणा की है। उसने उसके राजमहलों की दीवारों को शत्रु के हाथ सौंप दिया है। उन्होंने प्रभु के भवन में जैसे किसी बड़े पर्व के दिन कोलाहल किया है। प्रभु ने सियोन की पुत्री की दीवार को ढा देने का निश्चय किया है। उसने नापने की डोरी तान दी है, उसने नाश करने से अपना हाथ नहीं खींचा है, इसलिए उसने परकोटे और दीवार को विलाप करने पर लगा दिया है। वे दोनों साथ साथ खुमला गए हैं। विलाप गीत 2:8 देखने।
प्रभु के क्रोध को उसके क्रोध का प्रकोप के रूप में दर्शाया गया है और उसका क्रोध इज़राइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों पर पूरा हुआ। इसी कारण दानियेल की पुस्तक पहले और अंतिम प्रकोप का उल्लेख करती है। यिर्मयाह एक रेखा का उल्लेख करता है जिसे प्रभु ने खींच दी है जब उसने अपने चुने हुए लोगों पर अपना क्रोध प्रकट किया। उस रेखा का उल्लेख राजाओं की दूसरी पुस्तक में भी है।
और प्रभु ने अपने सेवक भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा, क्योंकि यहूदा के राजा मनश्शे ने ये घृणित काम किए हैं और जो उससे पहले थे उन अमोरियों से बढ़कर दुष्टता की है और अपनी मूर्तियों के साथ यहूदा को भी पाप में डाल दिया है। इसलिए इज़राइल का परमेश्वर प्रभु यूं कहता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति लाने वाला हूं कि जो कोई उसके विषय में सुनेगा उसके दोनों कान झनझना उठेंगे। और मैं यरूशलेम पर सामरिया की नापने की रेखा और अहाब के घर का सीसा तान दूंगा, और मैं यरूशलेम को वैसे पोंछ दूंगा जैसे कोई थाली पोंछकर उसे उलट देता है। और मैं अपनी विरासत के बचे हुए लोगों को त्याग दूंगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए शिकार और लूट बनेंगे। 2 राजा 21:10-14।
ईश्वर के रोष की वो रेखा अर्थात मूसा का 7 गुना पहले उत्तरी राज्य आहाब के घराने पर तानी गई और फिर यहूदा पर। लेव्य व्यवस्था 26 से लिया गया 7 गुना का एक और बाइबलीय शब्द तित्तर बित्तर है।
तब मैं भी क्रोध में तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और मैं ही तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना दंड दूंगा, और तुम अपने बेटों का मांस खाओगे और अपनी बेटियों का मांस भी खाओगे, और मैं तुम्हारे ऊंचे स्थानों का नाश कर दूंगा और तुम्हारी मूर्तियों को काट गिराऊंगा, और तुम्हारी लाशें तुम्हारी मूर्तियों की लाशों पर फेंक दूंगा, और मेरा मन तुमसे घृणा करेगा, और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा और तुम्हारे पवित्र स्थानों को वीरान कर दूंगा, और तुम्हारे सुगंधित धूप की सुगंध मैं न सूंघूंगा, और मैं देश को उजाड़ कर दूंगा और जो तुम्हारे शत्रु उसमें बसेंगे वे इस पर चकित होंगे, और मैं तुम्हें जातियों में तितर बितर कर दूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार खींच भेजूंगा, और तुम्हारा देश उजाड़ होगा और तुम्हारे नगर वीरान। तब देश अपने विश्राम दिनों का आनंद मनाएगा जब तक वो उजाड़ पड़ा रहेगा, और तुम अपने शत्रुओं के देश में रहोगे तब भी देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम दिनों का आनंद मनाएगा। जितने दिन वो उजाड़ पड़ा रहेगा वो विश्राम करेगा, क्योंकि जब तुम उस पर बसे थे तब उसने तुम्हारे विश्राम दिनों में विश्राम नहीं किया। लेव्य व्यवस्था 26:28-35।
अन्य जातियों में तितर बितर होने की बात दानियेल के लिए तब पूरी हुई जब उसे दास बनाकर बाबुल ले जाया गया यहोयाकीम की बंदहुआई के समय। तब जब दानियेल शत्रुओं की भूमि में था, भूमि ने विश्राम किया और अपने विश्राम दिनों का आनंद लिया। द्वितीय इतिहास हमें बताता है कि वो अवधि यिर्मयाह के 70 वर्षों की थी जिसे दानियेल ने अध्याय 9 में पहचाना।
और जो तलवार से बच निकले थे उन्हें वो बाबेल ले गया, जहां वे फारस के राज्य के राज्यकाल तक उसके और उसके पुत्रों के दास बने रहे। यहोवा के उस वचन को जो यिर्मयाह के मुख से कहा गया था पूरा होने के लिए, जब तक देश ने अपने विश्राम के वर्ष भोग न लिए, क्योंकि जितने समय तक वो उजाड़ पड़ा रहा उसने विश्राम माना ताकि 70 वर्ष पूरे हों। अब फारस के राजा कुरूश के प्रथम वर्ष में, ताकि यहोवा का वो वचन जो यिर्मयाह के मुख से कहा गया था पूरा हो, यहोवा ने फारस के राजा कुरूश की आत्मा को उभारा और उसने अपने सारे राज्य में ये घोषणा करा दी और इसे लिखकर भी भेजा। फारस का राजा कुरूश यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य दिए हैं और उसने मुझे आज्ञा दी है कि मैं यहूदा में यरूशलेम में उसके लिए एक मंदिर बनवाऊं। उसके सब लोगों में से तुम में जो कोई है उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ हो और वो ऊपर जाए। तू इतिहास सर्पने दर शून्य तेईस देश।
बिखराव शब्द सात काल का प्रतीक है। सात काल तक पशु की तरह जीने वाले नबूकदनेस्सर का दंड, दीवार पर लिखे रहस्यमय शब्द, मेने मेने टेकल उफारसिन द्वारा निरूपित बेलशज्जर के दंड का प्रतिरूप था। बेलशज्जर का दंड उस हस्तलेख द्वारा दर्शाया गया था जो 2520 के बराबर था, उतने ही दिनों की संख्या जितने दिन नबूकदनेस्सर पशु की तरह जिया और उतने ही वर्ष जितने लाय व्यवस्था 26 के सात काल में दर्शाए गए हैं। बेलशस्सर का न्याय, जिसका आदर्श नबूकदनेस्सर के न्याय ने प्रस्तुत किया था, सात काल द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया था और उन दोनों न्यायों ने बाबुल के पतन का प्रतिनिधित्व किया जो दूसरे स्वर्गदूत के संदेश का प्रतीक है। बाबुल का पहला पतन तब हुआ जब निमरोद का मीनार ढा दिया गया
और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि जब वे पूर्व से कूच कर रहे थे तब उन्हें शिनार देश में एक मैदान मिला और वे वहीं बस गए। तब वे एक दूसरे से कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाएं और उन्हें अच्छी तरह पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें और गारे के स्थान पर डामर का उपयोग किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक मीनार बनाएं जिसका सिरा आकाश तक पहुंचे और हम अपने लिए एक नाम करें, कहीं ऐसा न हो कि हम सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हो जाएं। तब प्रभु उस नगर और मीनार को देखने उतरे जिसे मनुष्यों के पुत्र बना रहे थे और प्रभु ने कहा, देखो ये लोग एक है और सबकी एक ही भाषा है और ये काम उन्होंने आरंभ किया है। अब जो कुछ वे करने का मन बनाएंगे उससे उन्हें रोका ना जा सकेगा। आओ हम उतरें और वहां उनकी भाषा में ऐसा भ्रम डालें कि वे एक दूसरे की बात न समझें। सो प्रभु ने उन्हें वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर कर दिया और उन्होंने नगर बनाना छोड़ दिया। उत्पत्ति 11:1-8।
बाबेल के न्याय के समय, जो निमरोद का ही न्याय था, प्रभु ने निमरोद के विद्रोहियों को संपूर्ण पृथ्वी के मुख पर तितर बितर कर दिया। निमरोद और उसके सहयोगी जानते थे कि उनका विद्रोह उन्हें तितर बितर कर देगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मीनार और नगर बनाने का उद्देश्य ये है कि हम अपने लिए एक नाम बनाएं, कहीं ऐसा ना हो कि हम संपूर्ण पृथ्वी के मुख पर चारों ओर तितर बितर हो जाएं। भविष्य सूचक अर्थ में नाम चरित्र का प्रतीक है। निमरोद और उसके सहयोगियों ने जो चरित्र स्थापित किया वह उनके कार्यों से प्रकट होता है, क्योंकि फल से तुम चरित्र को पहचानोगे। निमरोद के विद्रोह का फल और इसलिए उसके चरित्र का प्रतीक उस मीनार और नगर का निर्माण था। मीनार कलीसिया का प्रतीक है और नगर राज्य का प्रतीक है। निमरोद के विद्रोहियों का नाम, जो उनके चरित्र का प्रतिनिधित्व करता है, कलीसिया और राज्य के संयोजन का था, जिसे प्रतीकात्मक रूप से पशु की प्रतिमा के रूप में भी दर्शाया गया है। बाबेल के पतन की पहचान कराने वाले खंड में आओ वाला वाक्यांश तीन बार दोहराया गया है। तीसरी बार तब है जब परमेश्वर उनकी भाषा में भ्रम उत्पन्न करने और उन्हें चारों ओर बिखेर देने का न्याय लाते हैं। पहला आओ दूसरे आओ की तैयारी था जब उन्होंने अपना नगर और मीनार बनाई। दूसरे आओ के प्रसंग में जब उन्होंने अपना कार्य पूरा कर लिया तब परमेश्वर उनकी बगावत को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए नीचे उतरे। तीसरा आओ न्याय था और दूसरा आओ एक प्रत्यक्ष परख थी। पहला आओ उनकी पहली असफलता का प्रतिनिधित्व करता है और भविष्य सूचक रूप से आओ का तीन बार उल्लेख अनंत सुसमाचार की तीन चरणीय परीक्षा प्रक्रिया की पहचान कराता है। निमरोद की बगावत और पतन की गवाही में और भी बहुत जानकारी है, पर हम केवल ये बता रहे हैं कि जब पहली बार बाबुल बाबेल गिरा तब बिखेर दिए जाने द्वारा दर्शाए गए सात समय के प्रतीक की पहचान होती है। निमरोद का न्याय बिखेर दिए जाने से दर्शाया गया। नबूकदनेस्सर का सात समय से और बेल शज्जर का 2520 से। अल्फा और ओमेगा की पहचान ये दर्शाती है कि अध्याय 4 और 5 द्वारा निरूपित भविष्यवाणी की रेखा दूसरे स्वर्गदूत के अंतिम वर्षा संदेश और आधी रात की पुकार है। ये रेखा नबूकदनेस्सर द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बाबुल के पतन से शुरू होती है, जो 1798 की ओर संकेत करता है, जब आध्यात्मिक बाबुल पापसी पहली बार गिरा। फिर रेखा के अंत में बेलशस्सर का बाबुल गिरता है, जो आध्यात्मिक बाबुल फिर पापसी के क्रमिक पतन की शुरुआत को चिह्नित करता है, जिसकी शुरुआत रविवार कानून के संकट से होती है। रेखा की शुरुआत में बाबुल के पतन के 2 साक्षी हैं और रेखा के अंत में भी 2 साक्षी हैं। भविष्य सूचक तर्क महान आरंभ और अंत की पहचान को स्वीकार करता है और ये देखता है कि दानियल के अध्याय 4 और 5 द्वारा प्रस्तुत रेखा में बाबुल के पतन के विषय पर 4 साक्षी गवाही देते हैं। नबूकदनेस्सर एवं बेलशस्सर के रूप प्रतिरूप संबंध में जब इसे अंतिम दिनों से मिलाकर देखते हैं, तो हम धरती के पशु को उसकी मेमने जैसी अवस्था में नबूकदनेस्सर द्वारा निरूपित पाते हैं, और फिर जब वो अजगर की तरह बोलता है तो हम बेलशस्सर को देखते हैं। हम भविष्यवाणी के संबंध में देखते हैं कि गणतांत्रिक सींग, जिसे संत और राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा संचालित किया जाता है, नबूकदनेस्सर द्वारा दर्शाया गया है, और संविधान का उलट दिया जाना बेलशस्सर द्वारा दर्शाया गया है। हम नबूकदनेस्सर को एक बुद्धिमान कुवारी और बेलशस्सर को एक मूर्ख कुवारी के रूप में भी देखेंगे। मैं दानियल के अध्याय 4 और 5 पर अपना विचार विमर्श अगले लेख में जारी रखेंगे।
बेलशस्सर को परमेश्वर की इच्छा जानने और उसे पूरा करने के लिए बहुत से अवसर दिए गए थे। उसने अपने दादा नबूकदनेस्सर को मनुष्यों के समाज से निर्वासित किया जाना देखा था। जिस बुद्धि पर वो अभिमानी राजा घमंड करता था, उसे देने वाले ने ही उससे छीन लिया, ये भी उसने देखा था। उसने ये भी देखा था कि राजा अपने राज्य से निकाल दिया गया और मैदान के पशुओं का साथी बना दिया गया। परंतु बेलशस्सर के विनोद प्रेम और आत्म महिमा की लालसा ने वे शिक्षाएं मिटा दी जिन्हें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए था, और उसने वही प्रकार के पाप किए जिनके कारण नबूकदनेस्सर पर कठोर दंड आए थे। उसने कृपापूर्वक दिए गए अवसरों को व्यर्थ गंवा दिया, और सत्य से परिचित होने के लिए उसकी पहुंच में जो अवसर थे उनकी उसने उपेक्षा की। मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये वो प्रश्न था जिसे वो महान परंतु मूर्ख राजा उदासीनता से टाल गया। आज के लापरवाह उच्छृंखल युवाओं का यही खतरा है। परमेश्वर का हाथ पापी को वैसा ही जगा देगा जैसा उसने बेलशज्जर को जगाया था, परंतु बहुतों के लिए पश्चाताप करने में बहुत देर हो चुकी होगी। बाबुल के शासक के पास धन और मान था, और अपने घमंडपूर्ण भोग विलास में उसने स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर के विरुद्ध सिर उठा लिया था। उसने अपने ही बल पर भरोसा किया था, ये मानते हुए कि कोई ये कहने का साहस नहीं करेगा, तू ये क्यों करता है? परंतु जैसे ही एक रहस्यमय हाथ ने उसके महल की दीवार पर अक्षर लिखे, बेलशस्सर विस्म से भयभीत और मौन हो गया। क्षण भर में वो पूरी तरह बलहीन हो गया और बालक के समान दीन हो गया। उसे समझ में आया कि वो स्वयं बेलशस्सर से भी महान किसी की दया पर है। वो पवित्र वस्तुओं का उपहास कर रहा था। अब उसका विवेक जाग उठा। उसे समझ में आ गया कि उसे परमेश्वर की इच्छा को जानने और करने का अवसर मिला था। उसके पितामह का इतिहास उसके सामने दीवार पर लिखावट जितना ही स्पष्ट उभर आया। बाइबल एको 25 अप्रैल 1899।